देखते हैं जन्नत में मेरी मजलिसें। इसका 8th एपिसोड। मैं और अहमद सैर करके वापस आए तो नहर के करीब ही एक मोती के खैमे में वो मुझे ले गए। ये खैमा इतना वसीय और रीस था, कोई 60 मील तक का तो होगा, और खूबसूरत इतना था कि ये सारा मोती से बना हुआ था। मोती तराश के अंदर खैमा था। इसमें इतनी हसीन लड़कियां बैठी थी कि ऐसा हुस्न और जमाल मैंने कभी नहीं देखा। सुफेद शफाफ बेदाग रंगत वाली मोटी आंखों वाली, ऐसे जैसे कोई जवाहरात हो जिनको महफूज करके रखा गया। बाज लड़कियां याकूत और मरजान की तरह सुर्ख थी। दुनिया में शायद ये चली जाएं, तो लोग इनके हुस्न की ताब ना लाके मरी जाएं। वो खूबसूरत गीत गा रही थी। अहमद कहने लगे, अल्लाह ताला ने मेरी शादी इन हूरों से कर दी है। मैंने खुशी से कहा, अच्छा। हैरत अंगेज तौर पे मेरे अंदर कोई सौंपनापा नहीं आया, ना कोई रकाबत, ना कोई हसद। यही तो जन्नत की खूबी है। खादिमों ने खैमे में हमारा इस्तकबाल किया। हम जहां भी जन्नत में गए, इसी तरह हमारा शाहाना इस्तकबाल होता रहा, जैसे कोई शाही खानदान के अफराद हों। हम चलते चलते एक इंतहाई खूबसूरत मसनद पे आ बैठे। ये जगह क्या थी? एक करिश्मा, मैं तो इसको देखे ही जा रही थी। हम टेक लगा के बैठे हुए थे और खादिम हमारे लिए तरह तरह के थाल ला रहे थे, जिनमें किस्म किस्म के खाने खूबसूरती से रखे गए थे। खानों की खुशबू ऐसी थी कि दिल करता था सब कुछ खा ले। हालांकि जन्नत में भूख नहीं थी, भूख लगती ही नहीं थी, मगर खाने ऐसे थे कि दिल चाहता था खाने को। और जब से मैं जन्नत में आई हूं, जो खाना खाती हूं उसका मजा अलग है, कोई खाना दूसरे जैसा नहीं। मैंने अहमद से कहा, ये तो बताइए, दुनिया से जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? अहमद की मौत दरअसल कार के हादसे में हुई थी। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ था कि समझ नहीं आई थी कि हमारे साथ हो क्या गया। उन्होंने मेरा सवाल सुन के एक लंबी सांस ली और बोले, क्या बताऊं, जब इंसान की तैयारी अच्छी ना हो, वो जिंदगी में दौड़ रहा हो अपनी धुन में हो, कि अचानक एक मोड़ पर मौत उसके सामने मुंह फाड़े खड़ी उसके इंतजार में हो, तो सोचो खुद ऐसे शख्स का क्या हाल हो। जब एक्सीडेंट की बात में अस्पताल में तुम लोगों की तरफ देख रहा था, तो जहां तुम्हारी और बच्चों की फिक्र मुझे लगी हुई थी, वहां सबसे बड़ा गम ये था कि मेरी तो आगे की तैयारी कुछ भी नहीं। मेरे तो जहन के आखिरी कोने में भी कभी यह ख्याल नहीं आया था कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा, और इतनी अचानक कि मुझे मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। मैं उनकी बातें सुन रही थी और वो सारा मंजर दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गया था। मैंने कहा, हाँ, वो दिन कयामत से कम ना था हमारे लिए। अहमद कहने लगे, तुम लोगों के लिए तो कयामत था, मगर मेरे लिए तो कयामत पर कयामत था। तुम्हारे सामने तो सिर्फ दुनिया की फिक्र थी, उस दुनिया की जिसमें तुम जिंदा थी, और मेरे सामने आखरत थी कि जहां पर अमल की मुद्दत खत्म हो जाती है और ऐसी जिंदगी शुरू हो जाती जो कभी खत्म ना होने वाली थी। और सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वक्त कभी रिवर्स नहीं हो सकता था। वहां पर अमल का कोई भी इम्कान नहीं था, वो सिर्फ नतीजे की जगह थी। मुझे ये फिक्र दामनगीर थी कि मेरा क्या बनेगा, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रह गया था। मैं जब अस्पताल में जख्मों से चूर पड़ा हुआ था तो बोल भी नहीं सकता था। तुम लोग उस वक्त जानना चाहते थे ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और सब मेरे मुंह के करीब कान लाते थे, मगर मैं समझा नहीं पा रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, हम इतनी कोशिश कर रहे थे कि हम जान सके आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर आपके होंठ हिलते हुए नजर आते थे, आवाज नहीं आती थी। कभी हम आपसे कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, लेकिन कहीं पे भी बात बन के नहीं दे रही थी। अहमद कहने लगे हाँ। उस वक्त मुझे बड़ी बेबसी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं तुम लोगों को ये कहना चाह रहा था कि मेरी तरफ से सदका कर दो, पर किसी को भी मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे इस वक्त अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में ही सदका कर देता, अब जब मैं बेबस हो गया हूं और इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही, कोशिश के बावजूद मैं नहीं बता पा रहा था। मैं उस वक्त जान गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं, मुझे नजर आ रहा था कि मेरे पास आगे के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो फिर भी दुनिया में थी ना, तुम्हारे पास बहुत से मौके आगे मौजूद थे, मेरे चांसेस तो खत्म हो रहे थे। लोग सोचते होंगे उस वक्त कि मैं भरी जवानी में बहुत जल्दी चला गया, मगर दरअसल मैंने तो बहुत देर कर दी थी। दुनिया में धोखे में ही पड़ा रहा कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ, कर लूंगा कर लूंगा, अभी कौन सा मैं बूढ़ा हो गया हूं। वाकई जब इंसान जवान होता है और बाहिम्मत होता है तो बड़ा धोखे में रहता है, उसके वहमो गुमान में नहीं होता कि कभी उसको जाना भी पड़ेगा, कभी अगली रात उसकी कब्र में भी हो सकती है, ये तो कभी वो सोच भी नहीं सकता। अहमद कहने लगे फैला हुआ कारोबार, दोस्त अहबाब, जवानी, मजे, पैसा, सब कुछ ही तो था मेरे पास, फिर आखिरत की कौन सोचता। फिर बड़े अफसोस से कहने लगे हम भी दुनिया में कितने पागल होते थे, रोज खबरों में हादसात की बातें सुनते थे, मगर कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं भी तो एक हादसा बन सकता हूं। अपने प्यारों को खुद हाथों से दफनाते थे, कभी सोचते नहीं थे कि कोई एक दिन मुझे भी तो दफना रहा होगा। मैंने बड़ी मोहब्बत से अहमद की तरफ देखा, फिर उनसे पूछा आपके साथ हुआ क्या। वो बोले हाँ बस होना क्या था, ऐसी एक जिंदगी गुजार के जिसमें नेकियों की कोई ज्यादा परवाह ही ना हो, इसके बाद किसी को अचानक से कह दिया जाए उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, वो जो अभी पार्टी मोड में ही था उसको कह दिया जाए घंटी बज गई, योर टाइम इज अप, तो सोचो उसका क्या हाल हो। मेरा भी यही हाल था। फिर एक लंबी सांस खींच के बोले गुड़िया ये जो तुम मुझे यहां देख रही हो ना, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, उसकी रहमत है, और दाखले के बाद तुम्हारी नेकियां थी कि मुझे यहां तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, वरना तुम अंदाजा नहीं कर सकती मैं कितनी मुश्किल मरहलों से गुजर कर आया हूं। मैंने हैरत से कहा अच्छा लगता तो नहीं है। वह हंसकर बोले इसलिए कि जब कोई आदमी जन्नत में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको इतना नवाज देता है कि पिछली कोई तल्ख बात भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहती, किसी ऐसी बात का असर भी नहीं रहता। मैंने मजीद कुरेदते हुए पूछा, तो क्या आपको बहुत मसले हुए थे? वो बोले, तुम भी तो गुजरी हो उन तमाम मरहलों से, क्या भला वो आसान थे? मैंने कहा, हाँ हरगिज नहीं, बहुत मुश्किल थे। कहने लगे, हाँ तो फिर सोचो, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मेरे जैसे के लिए क्या हालात होंगे। मौत का मरहला, कब्र का मरहला, हशर का मरहला, मीजान का मरहला, हिसाब किताब का मरहला, पुल सिरात का मरहला, कोई एक मरहला था? मैंने तो कब्र से ही भुगतना शुरू कर दिया था, और वो कुछ वहां पे सहा कि कोई जिंदा इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लोग जमीन के ऊपर मजे कर रहे होते थे और मैं जमीन के नीचे। चाहता था कि मैं चीख चीख के कहूं, लोगों इस दुनिया के धोखे में ना आ जाना, पता भी नहीं चलना, और तुम कब्र में उतर जाओगे। अपनी तैयारी कर लो, यहां इस घर में आने से पहले पहले नेकियों का सामान बहुत सा जमा कर लेना, तुमको यहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मगर मेरी आवाजें किसने सुननी थी? मैंने कहा, अहमद, क्या आप समझते हैं कि लोगों को पता नहीं था जो आपने जाके बताना था? कुरान और हदीस तो सब कुछ बता चुका था, ऐसा तो नहीं था कि जमीन के ऊपर चलने वाले लोग इतने बेखबर थे। उनको तो सब कुछ खोल खोल के बता दिया गया था। फिर भी अगर कोई अल्लाह ताला की बात को भी ना समझे तो आपके बताने से क्या होना था? अहमद ने ठंडी आह भरी। फिर बोले, मैं यही चाहता था कि मेरी तरह कोई आके यहां पर ना पछताए। जहां पहुंच के मेरी आंख खुली, वहां पहुंच के किसी की ना खुले। मौत के बाद तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। मैं चाहता था कि दुनिया में इनकी आंखें खुल जाएं। वहां पे कोई राह फरार नहीं थी, वहां से कहीं मैं भाग नहीं सकता था, मेरा कोई मददगार नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के रहमो करम पे था, और सोचो, ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी उस रब की तरफ दोस्ती का हाथ ही ना बढ़ाया हो, कभी उसके लिए वक्त ही ना निकाला हो, कभी उसकी तरफ तवज्जो ही ना की हो, वो जब उसके रहमो करम पर आ जाए तो क्या होता? मैंने कहा, फिर कब तक ऐसा चलता रहा? कहने लगे, हाँ बस अपने गुनाहों की सजा भुगत के फिर मेरा अजाब खत्म हुआ। वैसे भी जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए और वो जो नेकी करते थे, कुरान पढ़ते थे, सदका करते थे, मेरे लिए दुआएं करते थे, वो सब मुझे पहुंचती थी, मेरे लिए आसानी हो जाती थी। और हशर के मैदान में जो बहुत मुश्किल था, जहां के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं था, जानती हो, एक ऐसा अमल था जो बहुत वजनी बन के तुला, एक चीज ऐसी थी जो मेरे काम आ गई। मैंने तजस्सुस से पूछा, वो क्या थी? कहने लगे, वो आंसू थे जो अस्पताल के बिस्तर पर बेबसी के आलम में मेरे गालों से बहते हुए मेरी दाढ़ी को भिगो गए थे। वो ऐसा वक्त था जब मैं अस्पताल में बेबसी में पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने रब को पुकारा था, मैंने तौबा की थी, और मैंने ये कहा था कि ऐ रब, जिसकी ताकत को जवाल नहीं उस पर रहम कर दे, जिसकी ताकत उसको छोड़े जा रही है। ऐ रब, जिसकी जिंदगी को जवाल नहीं उस पर रहम कर दे, जिसकी जिंदगी उसके हाथों से जा रही है। ऐ रब, मेरी बेबसी पे रहम कर दे, मुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं, मुझ जैसे हकीर जर्रे पे रहम कर दे, جس سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں۔ مجھ جیسے گرے پڑے پر رحم کرتے جس سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ بس پھر میری آنکھوں سے جو آنسو بہے تو میرے مالک نے اتنی قدردانی کی ان آنسوؤں کی کہ جب وہ آنسو میری نیکی کے میزان میں رکھے گئے تو وہ پہاڑوں کے برابر وزنی ثابت ہوئے۔ اور میں نے واقعی دل سے توبہ کی تھی، اور میں خود کو اس وقت مجرم کی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے بڑی بے بسی میں، بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تھا، ایسے وقت میں جب میں بھاگنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ جب میں نے میزان میں ان آنسوؤں کو اتنا بھاری تلتے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کاش میں نے عافیت کے دنوں میں، راتوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ آنسو بہائے ہوتے تو وہ کتنے قیمتی ہوتے اس کے سامنے۔ یہ کہہ کے احمد خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں بس ان سخت مرحلوں سے گزر کے جب جہنم کو حشر کے میدان میں گھسیٹ کر لایا گیا تو اس وقت تو میں نے سوچ لیا تھا کہ احمد اب تو نہیں بچے گا، اور جی غفلت کی زندگی، اور کہہ کہ زندگی تو ایک بار ملتی ہے مزہ کر لو، اور بے پرواہ ہو کے پڑا رہ اور کھیل کود میں زندگی گزار، تیرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ میں نے اتنا خود کو ملامت کیا، میں خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں واقعی اس قابل ہوں کہ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ جو محسن کے احسانات کی ناقدری کرے واقعی اس کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ اگر میرا رب جو اشکور ہے، جو قدردان ہے، اگر وہ میرے حقیر سے آنسوؤں کو سنبھال کے نہ رکھتا تو میں جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اگر وہ میری توبہ قبول نہ کرتا تو میں نہ جانے اس وقت کہاں ہوتا۔ اس توبہ کے چند دن بعد ہی میں دنیا سے چلا گیا تھا، مگر وہ چند دن میں نے بس رب کے سامنے فریادیں کی تھیں۔ اس کا کرم تھا، اس نے میری سن لی اور مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میں پل صراط سے گرتا پڑتا پار ہوا بڑی مشکلوں سے، مگر شکر ہے پار ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں آپ تو واقعی بہت سخت حالات سے گزر کے یہاں پہنچی ہیں۔ کہنے لگے ہاں انسان بڑا نادان ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے آگے کتنے مشکل مرحلے ہیں، وہ ہر چیز کو آسان سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ جب پڑے گی سر پہ تو دیکھی جائے گی۔ حالانکہ یہ سبھی مرحلے پہاڑوں کے برابر مشکل تھے۔ دنیا کی مشکلات تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ہم کتنے پریشان رہتے تھے، کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ اب تو سوچتا ہوں ان پریشانیوں کے بارے میں تو ہنسی آتی کہ وہ بھی بھلا کوئی مشکلات تھی جن پہ میں اتنا ہلکان رہتا تھا۔ اصل مسئلے تو مجھے بھولے ہوئے تھے، وہ تو کوئی اور ہی تھے جن کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر آج گڑیا دنیا قائم ہوتی نا تو میں واپس جا کے لوگوں سے کہتا کہ جنت تک پہنچنا ہے تو یہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اس کے لیے عمل کی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اگر بغیر تکلیف کے یہاں پہنچنا چاہتے ہو، بغیر عذاب سہے آنا چاہتے ہو، بغیر کسی سزا کو بھگتے ہوئے آنا چاہتے ہو تو بہت سارا سامان لے کر آنا، ورنہ میری طرح شاید جنت تک تو پہنچ جاؤ، मगर अजाबों को भुगतते हुए पहुंचोगे, जो किसी तरह भी वर्थ नहीं है। मैं गहरी सोच में खोई हुई थी, ये बातें वाकई कैसे इंसानियत तक पहुंचे। जन्नत बड़ी हसीन जगह है और यहां दाखिल होने के बाद वाकई कोई दुख गम नहीं, मगर इसका रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत सबर आजमा है। इस जगह पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। ये सौदा सस्ता नहीं है कि यूं ही मिल जाए, तो बड़ा महंगा सौदा है, और महंगी चीज कौड़ियों के भाव नहीं मिला करती। महंगी चीज के लिए कीमत भी भारी देनी होती है, और जिसके पास कीमत नहीं वो इस धोखे में ना रहे कि यूं ही ये मेरी झोली में आके गिर जाएगी, ये मुफ्त नहीं मिलती। मेरी एक खादमा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो कह रही थी, आपकी कुरान की साथी जन्नत आदन के आपके महल में आपका इंतजार कर रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने तो आज उनको दावत दी भी है। मैंने अहमद से इजाजत चाही, उनको सलाम किया और उनसे रुखसत हो गई। रास्ते में अपने कपड़े बदले, हालांकि पिछले कपड़े पुराने नहीं हुए थे, उनकी खूबसूरती वैसे ही थी जैसे पहले दिन मैंने पहने थे। फिर भी कपड़ों के शौक में मैंने कुछ और कपड़े बदल लिए और मेरी खादमाओं ने मुझे जेवर में ऊपर से नीचे तक आरास्ता कर दिया। मैं सर पर हसीन ताज रखे हुए बड़े नाजो अंदाज के साथ अपने जन्नत आदन के महल की तरफ चल दी। मेरी खादमाएं मेरे पीछे पीछे मेरे लंबे से दुपट्टे को उठाए हुए चल रही थी। महल में दाखिल होते ही रंग बू का ऐसा समां था, यूं लगता था बहुत सारे जगमगाते सितारे जमीन पर उतर आए। आज मेरी खुशी की इंतहा न थी। मेरे कुरान के साथी, जिनसे दुनिया में मुझे बहुत मोहब्बत थी, वो आज मुझसे मिलने आए हैं। इनमें बहुत से साथी वो थे जिनको कभी मैं मिली भी नहीं थी, सिर्फ उनसे ऑनलाइन ही बात करती थी, और बहुत से साथी ऐसे थे जिनके साथ मिलके मैं दीन का काम किया करती थी। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनके साथ मिलके मैं अपना कुरान का सबक दोहराया करती थी, और बहुत से तो ऐसे थे जो सात समुंदर पार बैठे होते थे और सिर्फ टेक्स्ट या फोन के ऊपर उनसे बात होती थी, मगर सभी दिल से इतने करीब थे, और आखिर क्यों ना होते, ये मोहब्बत ही बेलौस थी। ये मोहब्बत तो सिर्फ रब की खातिर थी। मैं जू ही दाखिल हुई, मेरी चंद साथी चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ी, गुड़िया, और मैं सबसे गले मिल मिलकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे जमाने भर की जुदाई के बाद कोई अपने किसी अजीज किसी प्यारे से मिलता है। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। आयशा तो चीख चीख के खुशी से बोली, गुड़िया हम पहुंच गए, यहां हम आ गए जन्नत में, वो जिसकी बातें हम मिलके सुना करते थे, जिसके लिए हम रातों को दुआएं किया करते थे, जिसके लिए हम तड़पते थे, जिसकी आरजू हम सबके दिलों में थी, याद है, जिसके लिए हम एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कहा करते थे, तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो मेरा पूछ लेना। वो बेइख्तियार होके बोली चली जा रही थी और मैं हां हां किए जा रही थी। उसके जज्बात उसके काबू में नहीं थे। हम पहुंच गए यहां गुड़िया, देखो आखिर हम पहुंच गए। रास्ता बहुत मुश्किल था, मगर हमारे रब ने हम पर रहम कर दिया, उसने हमें यहां दाखिल कर दिया। साइमा तो मुझे पकड़ के उछलती जा रही थी, देखो हम आ गए यहां, देखो हम आ गए यहां। वाकई कोई भी हमारी इस फीलिंग को, इस खुशी को समझ नहीं सकता था, इसलिए कि कोई नहीं जानता कि हम सब साथी दुनिया में किस तरह घंटों जन्नत की बातें किया करते थे, कैसे हम आरजुएं करते थे, कैसे हमारे ख्वाबों की जगह थी जन्नत, कैसे हम जन्नत की खातिर कुर्बानियां देते थे कि यहां नहीं भी मिला तो जन्नत में मिल जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ किसी ने कह भी दिया तो जन्नत में अल्लाह ताला इसका बदला दे देगा। कोई नहीं, यहाँ पे मेहनत करनी भी पड़ी तो जन्नत में इसका सिला पा लूंगी। कैसे हम अपने आप को तसल्लियां देते थे, कैसे हम कुर्बानियां करते थे कि ये काम अगर मुझे छोड़ना भी पड़ रहा है तो जन्नत में इसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा, इसका बदला मिल जाएगा। हमारी जिंदगी जन्नत के गिर्द घूमती थी, हम ख्वाबों ही ख्वाबों में जन्नत में रहते थे, बसते दुनिया में थे, मगर ये सोच जन्नत में होती थी। हमारी दुआ यही होती थी कि अल्लाह ताला हमें जन्नत के पास ही बना दे। इतना हम प्लान करते थे कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना तो वहां बैठ के हम ये करेंगे, इकट्ठे बैठ के हम ये बातें करेंगे, हम ऐसे किया करेंगे। और जो हमसे दूर रहते थे वो कैसे तड़पते थे कि दुनिया में तो हम मिल नहीं सके, वहां मिलेंगे। हमारी दुनिया में सबसे बड़ी आरजू ही ये थी कि हमें जन्नत मिल जाए, और उसके लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार होते थे, हर कुर्बानी करने को तैयार होते थे, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी ये सोच के करते थे कि जन्नत मिलेगी ना। फिर आज वो साथी भी नजर आ रहे थे जिनसे ना मिले ना जुले, मगर उनसे बेलौस मोहब्बत थी। सामने कुछ मेरे कुरान के साथी एक जगह दायरा बना के खड़े हुए थे, मैं उनकी तरफ बढ़ी, ये यहां क्यों जमा है। आगे गई तो हमारी कुरान की उस्ताजा एक मसहरी पर बैठी हुई थी जैसे तारों के झुरमट में चांद हो। मैं बेख्तियार सबको पीछे करके उनकी तरफ बढ़ी और चीखती भी बोली उस्ताजा, और उनसे लिपट गई। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था, मुझे अब और क्या चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। वो भी मुझे गले लगाकर शफकत से प्यार करने लगी। मेरे तो भाग जाग गए, आज लगता था मेरी जन्नत मुकम्मल हो गई। मेरी आंखों से आंसू रवां थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने वही जुमले अदा किए जो आयशा कह रही थी, उस्ताजा हम आ गए यहां, वो जो आप हमें बातें बताती थी सब सच हो गई, सब कुछ सच था, एक एक बात पूरी हो गई। हमारे रब ने हम पर करम कर दिया, हम सब की जुबानों पर अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात थे। मेरी तो जिंदगी की आरजू पूरी हो गई, हम सब यहां इकट्ठे हो गए, अब कोई गम नहीं, अब हमें कोई फिक्र नहीं, अब हमें कोई डर नहीं। मेरी उस्ताजा मेरी खुशी देखकर मुस्कुराए जा रही थी और मैं बेखुदी में बोली चली जा रही थी, सांस भी नहीं ले रही थी। उस्ताजा हम दुनिया में कितना डर डर के रहते थे, सच कहा था कुरान ने कि जन्नत में जाने वाले लोग दुनिया में अपने घर वालों में भी डर डर के रहते थे, और वाकई हम अपने घर वालों में जब भी बैठते थे तो यही की बातें करते थे और यही सोचते थे, यही डरते थे कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम कहीं जानू का ईंधन ना बन जाए, कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। जब हम कुरान की आयतें पढ़ा करते थे तो दिल पिघल जाता था, हम डर जाते थे, हम तो कभी बेखौफ होके रहे ही नहीं। और आज अल्लाह ताला ने हमारे सब खौफ दूर कर दिए, हमें अमन दे दिया, हमें हमेशा के लिए उन चीजों से महफूज कर दिया जो डराने वाली थी। मेरी उस्ताद मेरी बातें सुनती जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कहती जा रही थी, उनकी भी आंखों में शुक्र के आंसू थे। ऐसे लगता था मैंने उनके दिल की बात कह दी और मेरे तो जज्बात काबू में ही नहीं थे, समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोले चली जा रही हूं। जैसे खुशी में कोई दीवाना हो जाता है तो उसका क्या हाल होता है, मेरा भी वही हाल था। वाकई सच फरमाया था मेरे रब ने कि मुत्तकीन की दोस्तियां वहां पर भी कायम रहेंगी, और बाकी तमाम दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाएंगी। नेमतों भरी जन्नत फीकी पड़ जाती अगर मेरे ये प्यारे साथी यहां पे ना होते। यहां पर अल्लाह ताला ने जहां और बहुत सारी नेमतें दी हैं, वहां पे नेमतों का मजा लेने के लिए प्यारे साथी भी मिला दिए। प्यारे साथी ना हो तो अजनबियों के साथ इंसान को कहां मजा आ सकता है, कहां सुकून पा सकता है। फरी कहने लगी, हमें भी तो मिलने का मौका दो। उस्ताद मुस्कुरा के बोली, अब हम जन्नत में आ गए, यहां फुर्सत ही फुर्सत है, जितनी मर्जी बातें करें, जितना मर्जी वक्त ले लो, अब वक्त ही वक्त है सबके लिए। मैंने कहा, उस्ताजा मेरा जी चाहता है वक्त यहीं थम जाए और हम हमेशा इसी तरह रहे। वो हंस दी और कहने लगी, अरे पगली, ये जन्नत है, वक्त यहां थम ही तो गया है, हमें यहां पे हमेशा ही रहना है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये दुनिया थोड़ी है कि जल्दी जल्दी करो, सबको जल्दी जाना है अपने घर, किसी ने बच्चे स्कूल से लेने हैं, किसी ने घर जाके खाना बनाना है, ये तो जन्नत है। वाकई हमें ये जो बताया गया था कि जन्नत में नेमतों में मुसलसल इजाफा होता जाएगा, ये बात कितनी सच थी। कोई दिन ऐसा नहीं कि मजीद नेमतों की बारिश ना हो रही हो। मुझे पीछे से किसी ने कंधे से पकड़कर कहा, गुड़िया। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मैं बतूल। मैंने चीख मारी, बतूल, और उसके गले लग गई। सबकी खुशियां उनके चेहरों पर थी, जिनसे हसीन चेहरे मजीद हसीन हो गए थे, रोशन चेहरे मजीद रोशन हो गए थे। दुनिया में जो वाजबी सी शक्ल वाली साथी थी, वो भी आज जन्नत की हूरों के मुकाबले में ज्यादा हसीन थी। हमारे साथ पढ़ने वाली बाज खवातीन बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी, ये भी हमारी कुरान की साथी थी। आज वो भी हमारी तरह जवान हो गई। गुड़िया, अस्सलाम वालेकुम, एक मानूस आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने कुछ गौर किया, गौर से देखने के बाद लग रहा था कि ये आसफा आंटी हैं। मैंने कहा, आसफा आंटी? उन्होंने मुझे जोर से पकड़ा और खींचा और अपने गले लगा लिया और बोली, अब आंटी नहीं, अब तो मैं तुम्हारी सहेली हूं। मुझे हंसी आ गई। हाँ हाँ, आसफा कैसी हो? वो भी ये सुन के खिलखिला के हंस दी और शोखी से आंख मार के कहने लगी, चलो अच्छा है, यहां आंटी कहने का मसला भी खत्म हो गया। दुनिया में कौन सा हम शौक से आंटी बने थे, वो तो मजबूरी थी आंटी कहलाने की, वरना वहां पे भी दिल तो नहीं करता था अंदर से। मैं हंस हंस कर उनसे लिपट गई। ये जन्नत की बहारें थी जिन्होंने सबके दिल खुश कर दिए थे। दुनिया में सारी दौलत भी इंसान खर्च कर देता तो जन्नत नहीं पा सकता था, ऐसी खुशियां नहीं पा सकता था। ये खुशियां कहीं से भी खरीद कर नहीं लाई जा सकती थी। जितनी भी मेहनत कर लेते कहां से ला सकते थे। धोखे में थे वो सब लोग जो उस दुनिया को जन्नत बनाना चाहते थे, जबकि वो कभी जन्नत नहीं बन सकती थी। असल में तो जन्नत ये है, वो सब तो फेक था। यहां तक हमारा आज का एपिसोड था। अल्लाह ताला हमें उन जन्नतों में ले जाए जिनकी बातें हम यहाँ पे करते हैं। अल्लाह ताला उन जन्नतों में हमें बसा दे और बगैर कोई अजाब दिखाए, बगैर किसी मुश्किल में डाले, हमें वहाँ तक पहुँचा दे। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपना लास्ट एपिसोड करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको मज़ीद भी कुछ रेफरेंसेस बताऊँगी कि कहाँ से ये सब चीज़ें ली गई हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे शायद कि मैंने खुद बनाई है, हालांकि जितनी मैंने आपको इसमें वाकयात सुनाए, जैसे जिस इंसान को खेत मिला वो भी हदीस में मौजूद है बात, इसी तरह घोड़ा जिसको मिला, घोड़े घोड़े की जैसी सवारी, उड़ने वाले घोड़े की, ये भी हदीस में मौजूद है। इसी तरह बाला खाने जिन लोगों को मिलेंगे वहां पर, उनके क्या अमल होंगे, वो भी हदीस में मौजूद है। इस किस्म के महल्लात और मोती के खेमे, ये भी हदीस से हमें पता चलता है। तो यानी जितनी भी बातें ये सब हैं, ये हदीस में मौजूद है, सिर्फ उनको एक कहानी की शक्ल दी गई है। लिहाजा ये सब बातें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दी, और इन बातों से हम अंदाजा थोड़ा सा लगा सकते हैं कि जन्नत कैसी होगी। वरना ना तो मैं वहां से होके आई, ना आपने देखी। हम यहाँ पे जो तसव्वुर कर सकते हैं वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि उसको कोई तसव्वुर में भी नहीं ला सकता, किसी दिल पे उसका कभी ख्याल ही नहीं गुजरा। लिहाजा वो ऐसी जगह है जिसको आप आज अगर जितना भी कह लें कि मैं सोचती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ वो ऐसी होगी, वो ऐसी नहीं है। जो आपकी इमेजिनेशन में आ जाए वो जन्नत है ही नहीं। जन्नत तो है ही वो जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड। लिहाजा जितने हद तक हम सोच सकते हैं, जितने हद तक हमारे तसव्वुर पहुंच सकता है, हम बस उतनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। इसके आगे यही बस यहां तक हम कहेंगे कि हम इससे आगे हम यही कहेंगे कि जन्नत वो जगह है जहां तक किसी सोच की रसाई नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें वहां तक पहुंचा दे, और अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا